नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के आखिरी तीन चरणों के लिए चुनाव प्रचार हुआ तेज। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मोतिहारी में जनसभा को संबोधित करेंगे। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के नेताओं से चुनाव प्रचार के दौरान संयम बरतने का आग्रह किया। सातवें और अंतिम चरण के चुनाव के लिए नामांकन समाप्त। 219 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। आज होगी नामांकन पत्रों की जांच। और राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जमीन से जुड़े विवादों को 90 दिनों के अंदर निपटाने का दिया निर्देश। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के पांचवें, छठे और सातवें चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न पार्टियों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक लगातार चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सुबह 11 बजे पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के सिलौना में जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के हरसिद्धि और हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के महुआ में जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि जंदाहा में रोड शो करेंगे। वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी मोतिहारी और गोपालगंज में चुनाव प्रचार करेंगे। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी आज दो दिवसीय यात्रा पर पटना आ रहे हैं। भाजपा कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार वे आज देर शाम पटना आएंगे और पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करेंगे। कल वे मधुबनी से भाजपा उम्मीदवार अशोक कुमार यादव के पक्ष में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। श्री शाह सीतामढ़ी में भी एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पटना जिले के पटना साहिब और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में चुनाव को लेकर प्रचार तेज हो गया है। प्रमुख पार्टियों के उम्मीदवारों के साथ ही कार्यकर्ता भी सघन जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से भी मतदान बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अरवल जिले में लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में युवा मतदाता संवाद का आयोजन किया गया। इस दौरान युवाओं को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं को चुनाव के दौरान प्रचार अभियान के अच्छे उदाहरण पेश करने चाहिए। आयोग ने यह भी कहा है कि यह जिम्मेदारी नेताओं की है कि उनका चुनावी भाषण ऐसा हो जिससे देश के सामाजिक ताने बाने को नुकसान न पहुंचे। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों पर हुई कार्रवाई के बारे में आयोग ने कहा कि 16 मार्च को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से 90% से अधिक शिकायतों का निपटारा किया गया है। आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दलों की ओर से कोई भी बड़ी शिकायत लंबित नहीं है। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए राज्य के 8 लोकसभा क्षेत्रों में आज नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। कल नामांकन के आखिरी दिन तक इन लोकसभा क्षेत्रों में 219 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। चुनाव आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार नालंदा लोकसभा क्षेत्र से 33, पटना साहिब से 32, पाटलिपुत्र से 24, आरा से 22, बक्सर से 27, सासाराम से 14, काराकाट से 27 और जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र से 40 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। इधर भोजपुर जिले के आगियांव विधानसभा उपचुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। इस चरण में उम्मीदवार 17 मई तक नाम वापस ले सकते हैं। मतदान 1 जून को होगा। और आइए अब सुनते हैं राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के राजनीतिक परिदृश्य पर आधारित आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला। आज बात सीवान लोकसभा सीट की। सीवान बिहार के उन 8 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है जहां छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
भारत के पहले राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली सीवान राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। 1957 में अस्तित्व में आए इस लोकसभा सीट पर शुरुआती दिनों में कांग्रेस का दबदबा रहा। वहीं एक दौर में ये सीट बाहुबली शहाबुद्दीन को लेकर भी काफी चर्चा में रही। पिछले दो लोकसभा चुनाव से इस सीट पर भाजपा और जदयू को जीत मिलती रही है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में सीवान से जदयू की कविता सिंह को जीत मिली थी। उन्होंने राजद की हिना शहाब को पराजित किया था। हिना शहाब पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी है। इस बार एनडीए में सीट बंटवारे के तहत ये सीट जदयू के खाते में आई है। पार्टी ने निवर्तमान सांसद कविता सिंह की जगह विजय लक्ष्मी देवी को उम्मीदवार बनाया है। विजय लक्ष्मी देवी जीरा देवी से पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा की पत्नी है और पिछले दिनों उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक मोर्चा को छोड़कर जदयू में शामिल हुई है। वहीं विपक्षी गठबंधन ने राजद से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। श्री चौधरी वर्तमान में सीवान सदर से विधायक हैं। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हेना शहाब निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में हैं। सीवान सीट पर कुल 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, लेकिन जदयू की विजय लक्ष्मी देवी राजद के अवध बिहारी चौधरी और निर्दलीय हेना शहाब के बीच ही त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। विधानसभा वार स्थिति देखें तो लोकसभा क्षेत्र के 6 में से 5 सीटों पर विपक्षी गठबंधन के विधायक हैं। सिर्फ एक सीट पर भाजपा का कब्जा है। सीवान रघुनाथपुर और बड़हरिया पर राजद को जीरा देई और दरौली पर भाकपा माले का कब्जा है। दरौंदा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक हैं। स्थानीय मुद्दों की बात करें तो क्षेत्र का पिछड़ापन बेरोजगारी महंगाई और पलायन प्रमुख है, लेकिन इन मुद्दों से अलग सभी प्रत्याशी सामाजिक समीकरणों की बदौलत अपनी जीत सुनिश्चित करने में लगे हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्षेत्र के लगभग 19 लाख मतदाता जदयू की विजय लक्ष्मी देवी राजद के अवध बिहारी चौधरी और निर्दलीय हिना शहाब में से किसके साथ जीत का सेहरा बांधते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए सीवान से आकाश कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वसीम अहमद।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारे यूट्यूब चैनल AIR News Patna पर भी सुने जा सकते हैं। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता DCLR को जमीन से जुड़े विवाद 90 दिनों में निपटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि DCLR बिना दोनों पक्षों की सुनवाई किए किसी मामले को खारिज नहीं करेंगे। श्री सिंह ने इस संबंध में सभी प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी को भेजे आदेश में कहा है कि जिला स्तर पर ऐसे मामलों की लगातार समीक्षा और निगरानी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि मामलों की नियमित समीक्षा से कार्यों के निष्पादन में तेजी आएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोगों को पुलिस, केंद्रीय जांच ब्यूरो, नारकोटिक्स विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, प्रवर्तन निदेशालय और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारी बनकर धोखाधड़ी करने वालों से सावधान रहने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा है कि धोखाधड़ी के लिए ये लोग आमतौर पर पुलिस स्टेशनों और सरकारी कार्यालयों की तर्ज पर बने स्टूडियो का उपयोग करते हैं और पुलिस की वर्दी में रहते हैं। मंत्रालय के अनुसार यह एक संगठित ऑनलाइन आर्थिक अपराध है। मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे ऐसी घटना की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 या www.cybercrime.gov.in पर दे सकते हैं। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने आकाशवाणी को अधिक प्रभावी, लचीला संगठन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने आकाशवाणी को डिजिटल माध्यम से श्रोताओं तक और अधिक पहुंच बनाने को भी कहा है।
आकाशवाणी को एक इफेक्टिव और फ्लेक्सिबल और रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन बनाए, ये हमको करना चाहिए। डिजिटल में, पॉडकास्ट में, यूट्यूब पे, जो और भी जो माध्यम है डिजिटल जैसे पॉडकास्ट के प्रसारण के, उसका उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमको पहुंचना चाहिए।
श्री सहगल ने नई दिल्ली में आकाशवाणी मुख्यालय का दौरा किया और अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने उन प्रमुख क्षेत्रों पर भी चर्चा की जिनमें गुणवत्तापूर्ण सामग्री तैयार करने के लिए सुधार की आवश्यकता है। श्री सहगल ने सामान्य समाचार कक्ष GNR और हिंदी समाचार कक्ष सहित आकाशवाणी की अन्य इकाइयों का भी दौरा किया। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर भागों में तापमान में बढ़ोतरी से एक बार फिर गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के 9 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। कुछ जगहों पर लू की स्थिति भी बनी रही। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 4 दिनों तक तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की और वृद्धि की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक एस के सुमन ने बताया कि अगले 3 दिनों तक राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिण मध्य भागों में अधिकांश स्थानों पर हॉट डे की स्थिति बनी रह सकती है।
मौसम विश्लेषण के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि का पूर्वानुमान है। 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर पूर्वी भागों में कुछ भागों पर हल्की बूंदाबूंदी की संभावना है, जबकि राज्य के बाकी भाग शुष्क बने रहेंगे। 48 घंटों के दौरान मौसम की कोई विशेष चेतावनी नहीं दी गई है।
इधर 19 मई के बाद मौसम में परिवर्तन की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी युक्त पूर्वा हवा के प्रभाव से प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना बनी है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद सुशील कुमार मोदी का अंतिम संस्कार कल देर शाम पटना के दीघा घाट पर किया गया। उनके दोनों पुत्र उत्कर्ष तथागत और अक्षय अमृतांशु ने सम्मिलित रूप से मुखाग्नि दी। अंत्येष्टि के मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कई केंद्रीय मंत्री और राज्य सरकार के मंत्री समेत सांसद और विधायक उपस्थित थे। गौरतलब है कि सुशील कुमार मोदी का सोमवार की देर शाम नई दिल्ली के एम्स में निधन हो गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक यदुवीर सिंह रावत ने कहा है कि गंगा किनारे की प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन किया जाएगा और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। उन्होंने पटना में कहा कि 5000 साल पहले की शहरी सभ्यता का पता हड़प्पा की खुदाई से चला है और इसके अध्ययन के लिए दीर्घकालीन योजना बनाई जाएगी। सुपौल जिले में एसएसबी सीमा चौकी बिनाली पट्टी में सीमावर्ती क्षेत्र के युवकों में सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस की भर्ती के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। खगड़िया के जिला और सत्र न्यायाधीश काजल झा ने मंडल कारा का निरीक्षण किया। मधुबनी जिले के ललमनिया थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के अंतिम संस्कार से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है। हिन्दुस्तान ने इस खबर का शीर्षक लगाया है, सुशील मोदी को नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। दैनिक जागरण ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के बाद आयोजित सभा में उनके बयान के हवाले से लिखा है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, भाजपा नेता सत्यनारायण सिन्हा हत्याकांड में राजद विधायक रीतलाल बरी। प्रभात खबर का शीर्षक है, बीते वर्ष पासपोर्ट बनवाने वालों की संख्या में 62,000 की कमी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के आखिरी 3 चरणों के लिए चुनाव प्रचार हुआ तेज। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मोतिहारी में जनसभा को संबोधित करेंगे। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के नेताओं से चुनाव प्रचार के दौरान संयम बरतने का आग्रह किया। 7वें और अंतिम चरण के चुनाव के लिए नामांकन समाप्त। 219 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। आज होगी नामांकन पत्रों की जांच। और राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जमीन से जुड़े विवादों को 90 दिनों के अंदर निपटाने का दिया निर्देश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।